राम राम हरे हरे। प्रिय गुरुगांव भक्तवृंद, कल हमने दूसरा अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसमें पहली लहर का कुछ टुकड़ा था कि तीन भक्ति के विभाग हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और फिर इन तीन विभागों में छह लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, इसका हमने श्रवण कल किया। आप सबको यह हमेशा याद रहना चाहिए कि पहले दो लक्षण क्लेश घनी और शुभ दास साधन भक्ति के स्तर पे भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। भाव भक्ति तक पहुंचते पहुंचते मोक्ष लघुकृता और सुदुर्लभा और दो लक्षण उसमें जुड़ जाते हैं तो चार हो जाते हैं। और प्रेम परिपक्व हो जाने के पर चार ये तो रहते ही हैं, दो और नए आ जाते हैं, सांद्र आनंद विशेष आत्मा और कृष्ण आकर्षण। दूसरा हमने कल पढ़ा कि भक्ति में कौन, उत्तम भक्ति में लग कौन सकता है, उसके लिए शब्द था थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो। किसके लिए? शास्त्र के लिए। शास्त्र के लिए रुचि कैसे उत्पन्न होगी? अज्ञात भक्ति जनक सुकृति के कठे होने से। तो अज्ञात भक्ति जनक सुकृति कैसे कठी होगी? भक्तों के संग से। कितना टाइम लगेगा? बोला ये बहुत जन्मों का अज्ञात भक्ति जनक सुकृति कठी होते होते जब वो भाग्यशाली भक्त, अज्ञात सुकृति ऐसे है कि माने कोई आप कीर्तन करते जा रहे हैं, कोई देख के कहे अरे देखो हरे कृष्ण वाले कितने अच्छे हैं, ये उसको अज्ञात सुकृति मिल गई। कोई भक्त है उसको प्रसाद दे देता है, पुस्तक ले लेता है, उनकी अज्ञात सुकृति हो गई। ऐसे मंदिर के लिए कोई सेवा करता है, ये उसकी अज्ञात सुकृति हो गई। अब प्रसाद भगवान का वितरण हो रहा है आपके मंदिरों के द्वारा, इसमें जो सहयोग करता है ये अज्ञात सुकृति हो गई। ये जब कई जन्मों की कठी होती है तो भक्तों के, फिर भक्तों का संग मिलता है और भक्त के निर्देश में गीता भागवत पढ़ने में थोड़ा सा आकर्षण हो गया तो उसका भक्ति का शुभारंभ हो जाएगा। यहां पहली लहर पूरी होती है और दूसरे अध्याय में यहां ये विभाग पूरा होता है। फिर कहते हैं अब हम जो पहली भक्ति है, पहला भक्ति का जो जो वर्ग है, पहला भक्ति का जो विभाग है वो है साधन भक्ति। अब इसका वर्णन करते हैं। साधन भक्ति की कल हमने परिभाषा पढ़ी, उसमें दो बातें हैं। पहली बात है मन और इंद्रियों से अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी है, और दूसरा है उस साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति को प्रकट करना। तो भाव भक्ति है कहाँ? सबके हृदय में है, वो जन्म से हमारे साथ है। और इसके लिए दो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, एक बच्चे में चलने का सामर्थ्य और एक पागल का चिकित्सा मानसिक रोग के विशेषज्ञ के द्वारा ऐसे भौतिक भोग में शरीर को मैं मानने वाले मूर्खों का कृष्ण भावना के भक्तों के द्वारा चिकित्सा हो जाए तो फिर वो साधन भक्ति में लग जाएगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर है ही। इस भाव को प्रभुपाद ने कहा है जंगल में रहने वालों के हृदय में भी ये भाव होता है जो आदिवासी आदि है। तो यहां ये हमने श्लोक पढ़ा था साधन भक्ति का, कृते साध्य, कृते का अर्थ है क्रिया, क्रिया होती है इंद्रियों से और मन से, भवेत साध्या, जिसके द्वारा भाव भक्ति का उदय हो। बोला वो है कहां? बोला हृदय में है, उसको प्रकट करना है, वो सिद्ध है पहले से। और फिर एक साधन भक्ति करने के लिए एक मुख्य नियम का हमने कल श्रवण किया, वो है कैसे भी मन कृष्ण में लगे, केन उपाय न मन कृष्ण निवेशय, कोई भी उपाय हो परंतु अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। और दूसरा इसके लिए था सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश महाराज का। इसके उपरांत हमने साधन भक्ति के दो विभाजन पढ़े, दो विभाग है साधन भक्ति के, एक का नाम है वैदी साधन भक्ति, दूसरी का नाम है राग अनुगा साधन भक्ति। तो वैदी साधन भक्ति में अपने आप कृष्ण में आकर्षण स्वत नहीं है, शास्त्र के अनुशासन और गुरु के निर्देश से अनिवार्य रूप से साधन करना साधन भक्ति कहलाती है। राग अनुगा भक्ति में कृष्ण में स्वत आकर्षण है, उसमें नियमों से अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, परंतु उसको मंगल आरती में उठा के जबरदस्ती भेजना के उसकी अटेंडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वत अपने आप जाएगा। परंतु ये दोनों साधन भक्ति के अंतर्गत आती है। यहां से अब केवल वैदी साधन भक्ति का वर्णन चलेगा, रागनों का फिर 15वें अध्याय तक आएगी। अब वैदी साधन भक्ति की फिर परिभाषा बताई, जिसमें राग उत्पन्न नहीं हुआ है कृष्ण में, रागहीन व्यक्ति शास्त्र के अनुशासन से गुरु के मार्गदर्शन में इंद्रियों और मन से जो भक्ति करता है उसको वैदी साधन भक्ति कहते हैं। इसलिए हमने, इसके लिए हमने प्रमाण भागवत से पहले स्कंद में तस्माद् भारत सर्वात्मा ईश्वरो भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम यदिच्छति अभयम्, ये जो हमने पढ़ा के साधन भक्ति के अंग हैं, श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए भय से मुक्त होना है। तो फिर हमने यहां कल विराम दिया था कि वैदी भक्ति का सार है ये पद्म पुराण का श्लोक, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचेत सर्वे विधि निषेधाः अस्य एतयो एव किंकराः। इसमें पहली लाइन में है विधि, नेम जो पालन करना चाहिए, जैसे हमारे को हरे कृष्णा जपना नेम है, सर्वदा सर्वत्र सब जगह पे विष्णु का कृष्ण का स्मरण बना रहना चाहिए, हर स्थिति में हर समय हर जगह। और निषेध है, जैसे हमारे पास चार नियम पालन निषेध है, ऐसे निषेध है विस्मृतव्यो न जातुचित, कभी भी किसी अवस्था में भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, यह है निषेध। अब कहते हैं सर्वे विधि निषेधस्यो, जितने भी शास्त्रों में नियम है और निषेध है, विधि है और निषेध है, एतयोर एव किंकर, वो सब इस एक नियम के सेवक है, नौकर है। यहां हमारा पद्म पुराण के श्लोक के साथ कल वैदी साधन भक्ति की परिभाषा को हमने विराम दिया था। अब हम अपने पुस्तक में पढ़ेंगे कि ये जो नियम है, कौन सा नियम, स्मर्तव्य विष्णु सततम विष्णु, ये नेम सारे वर्ण आश्रम के लिए अनिवार्य है। ये जो नेम है ये सारे वर्ण आश्रम के लिए अनिवार्य है, ये मुख्य बात आज हम यहां से पढ़ने जा रहे हैं। अपने पुस्तक में लिखा है कि ये जो सिद्धांत है सर्वत्र भगवान कृष्ण का स्मरण किया जाए, ये सारे वर्ण आश्रम सबके लिए अनिवार्य है, सबके साथ लगता है। और इसका प्रमाण अब प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, चार वर्ण चार आश्रम आपको नाम आता है, चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार आश्रम है ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास। प्रभुपाद जी लिखते हैं चाहे नया ब्रह्मचारी हो चाहे प्रगति किया हुआ सन्यासी हो, सबके लिए यह नियम बराबर लगता है। अब इसके लिए प्रमाण दिया है भागवत के 11वां स्कंद के 5वें अध्याय के 2रे और 3रे श्लोक में चमस ऋषि लिखा है अपने पुस्तक में। तो ये मैं कहो तो श्लोक इसका पढ़ लूं, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो श्लोक इसका ये है, इसका श्लोक है मुख बाहुर पादेभ्यो पुरुषस्य आश्रम ही स चत्वारो जाग्नीरे वर्ण गुण ही विप्राद्य पृथक स एषाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानान भ्रष्टात पतन्ति अधा। अब इसमें मुख्य बात क्या है, क्योंकि चारों वर्ण और आश्रम भगवान विराट पुरुष के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण माथे से हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर से और शूद्र जांघों से, और इस प्रकार से सन्यासी वानप्रस्थ और गृहस्थ और ब्रह्मचारी वो भी इसी प्रकार भगवान के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए स एषाम पुरुष साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम, ये भगवान के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए न भजन्ति अवजानन्ति, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो क्या होगा, स्थानात भ्रशात, अपने स्थान से ब्राह्मण नीचे गिर जाएगा, सन्यासी गिर जाएगा, पतन्ति अध और नीचे गिर जाएंगे। ये है श्लोक का भाव, ये श्लोक है जिसको यहां अपने पुस्तक में दिया गया है। तो यहां लिखा क्या है, वो वहां लिखा है चार वर्ण और आश्रम भगवान के विराट रूप से प्रकट हुए हैं, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उसका पतन हो जाएगा। अब हम आगे इस विभाग में पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद जी चार वर्ण और आश्रम के जो कार्य हैं उनका निर्धारित करते हैं। वैसे प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में भगवद गीता के श्लोक का उल्लेख किया है कि ये चरण वा चार वर्ण आश्रम गुण कर्म के विभाग से है, चौथे अध्याय का श्लोक चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। और इन चार वर्णों का कार्य क्या है इसका प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। वैसे भगवद गीता के तो अंदर चारों वर्णों का अलग अलग हर एक वर्ण का कार्य तो विस्तार से बताया हुआ है, परंतु यहां जो मुख्य कारण दिए हैं उसमें ब्राह्मण के दो मुख्य कारण है, दो मुख्य कर्म है, ब्राह्मण के दो मुख्य कर्म है। क्या है दो ब्राह्मण के मुख्य कर्म, पहला है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना, गीता भागवत का प्रचार करना, वेद का प्रचार करना। दूसरा है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भोजन ग्रहण करना, क्योंकि मुख से उत्पन्न है, ब्राह्मण का उत्पत्ति मुख से है भगवान के, तो मुख से एक तो वेद का ब्रह्म का शब्द ब्रह्म का वर्णन करे और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भोग ग्रहण करे। वैसे भगवान जो हम भगवान को अर्पण करते हैं उसको दो प्रकार से ही भगवान ग्रहण करते हैं, या अग्नि के रूप में यज्ञ में या ब्राह्मण के मुख से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं प्रचार न करे भगवान का और केवल ग्रहण करे, भोजन ही खाए, तो वो अपने कर्तव्य को पालन ठीक तरह नहीं कर रहा है और उसका पतन हो जाएगा। जो प्रचार करे उसको प्रसाद भगवान के प्रतिनिधि के रूप में खाने का अधिकार है। भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ब्राह्मण खाया भगवान प्रसन्न, इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट करने से ब्राह्मण भगवान संतुष्ट होता है। ये वेदों के वाक्य हैं, इसलिए पुरानी परंपरा में ब्राह्मणों को घर ला के भोजन कराना, विधिवत उनको दक्षिणा देना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। और ब्राह्मणों का धर्म है कि जब आए तो पहले खाएं, उससे पहले भगवान की कथा करें, कीर्तन करें और भगवान के सेवा में सबको लगाएं, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है अपनी प्रजा को माया के बंधन से मुक्त करें, माया के युद्ध में अपनी प्रजा को विजयी बनाए, माया के प्रभाव से बचाए। वैसे क्षत्रिय का अर्थ है रक्षा करना, तो क्षत्रिय यहां रक्षा करता है अपनी प्रजा की माया से बचाने की। ब्राह्मण उसको भक्ति में लगाएगा, माया से क्षत्रिय बचाएगा। वैश्य का प्रभुपाद जी ने यहां तो दो कार्य लिखा है, परंतु तीन कार्य मुख्य हमारे पास स्लाइडों में है। और तीन कार्य मुख्य क्या है? कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम। इसमें गौरक्षा रखा है बीच में, पहले है कृषि खेती और दूसरा है वाणिज्य व्यापार। दोनों व्यापार और खेती गाय और बैल के ऊपर आधारित होनी चाहिए, खेती बैल से हो और वाणिज्य गाय से उत्पन्न होने वाले पदार्थ गोबर से लेके दूध तक, जो पांच रत्न गाय देती है। एक प्रसिद्ध आपने कभी सुना होगा, महात्मा की बड़ी गौशाला थी, किसी ने पूछा अच्छा दूध किसका है, बोला भैंस का। तो महाराज गौशाला रखते हैं और भैंस का दूध अच्छा कहते हैं, बोला आपने दूध पूछा तो दूध तो भैंस का अच्छा होता है, बोला गाय गाय का दूध को नहीं अमृत होता है, वो दूध नहीं है वो अमृत है। पंच गव्य जो हैं और कृषि बेल से कृषि करें, और प्रभुपाद जी कहते थे हमारे बलराम जी कृषि के आचार्य हैं, हलहा हल कंधे के ऊपर उठाते हैं, और हमारे श्री गोपाल गाय रक्षा के आचार्य हैं, गौ रक्षा के आचार्य हैं, ये दोनों हमारे कृष्ण बलराम कृषि और गौ रक्षा के आचार्य हैं। और जो चतुष्ट वर्ण है उसका काम है अपने शरीर से अन्य सारे तीनों वर्णों की सेवा करना, परिचर्या सेवा करना। तो ये हमारे पुस्तक में चार वर्णों का कार्य बताया है भक्ति रसामृत सिंधु के, भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद जी ने ये विशेष अपनी तरफ से लिखा है। और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है कि आज कलयुग में क्या स्थिति है, जब वर्णों के अंतर्गत ऐसा सहयोग नहीं होगा, शिक्षक नहीं होंगे, रक्षक नहीं होंगे, पोषक नहीं होंगे, शिक्षक ब्राह्मण है, रक्षक क्षत्रिय है और पोषक वैश्य है और सेवक शूद्र है। ये चार नाम आज मेरे मुख से ऐसे अच्छे निकल रहे हैं, शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक, बड़े अद्भुत नाम इनके लिए निकले हैं, अच्छे हैं। और ये अगर आप में सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे का, तो सारा मानव समाज पतन की ओर चला जाएगा, और ये कलयुग में आज स्थिति चारों ओर देखने में आ रही है। कोई अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहा, कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कहता है मैं क्षत्रिय हूं, परंतु उनका गुण और उनका कर्म, उनके घोषणा से अपने आप को जो कहते हैं उसके साथ मिलता नहीं है। आज तो सरकार ने जब से वो एक प्रकार का नीची जातियों को नौकरियां देना शुरू किया, इसलिए ऊपर के वर्ण वाले नीची जाति में अपने आप को पंचीकरण कराने की मूर्खता करके अपने कर्म धर्म को त्याग के केवल एक जन्म की कुछ छोटी नौकरी के लिए भगवान की सेवा का ही परित्याग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब गए तो देखा कि सारा समाज ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से विहीन है, वैश्य बहुत है, व्यापारी बहुत हैं, श्रमिक बहुत हैं, एक कैपिटलिस्ट है, साम्यवादी हैं और एक पूंजीवादी है, एक कम्युनिस्ट है, साम्यवादी और पूंजीवादी, एक वैश्य है, एक शूद्र है, परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, इसलिए सारी दुनिया दुखी है। और प्रभुपाद ने कहा मैं ब्राह्मण शिक्षा देके आपको ब्राह्मण बनाऊंगा, थोड़े भी ब्राह्मण समाज में होंगे तो समाज का उद्धार हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, किसी व्यक्ति का कोई वर्ण नहीं है आज, मुख्य रूप से वो भगवान के संबंध से ही विच्छेद हो गए हैं, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सारे वर्ण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, हरितोषणम। हर एक वर्ण को प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से, भागवत से श्लोक लिखे हैं कि भगवत गीता से लिखा है हर एक वर्ण आश्रम वाला अपने ही क्रिया से, कार्य से, कर्म से भगवान की पूजा करे और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और भागवत से दिया है वर्ण आश्रम का मुख्य उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना, नहीं तो शर्म ए वही केवलम, नहीं तो सारा वैरथ का समय का गवाना है और अपनी शक्ति का वैरथ में नाश करना है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर धरती के ऊपर वैकुंठ बनाना है तो अगर सारा समाज अपने अपने वर्ण आश्रम के कार्यों को ठीक तरह से करे और कृष्ण भावना भावित हो जाए तो कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह सारा मानव समाज सुख और शांति को प्राप्त करेंगे और पूरा विश्व वैकुंठ बन जाएगा। ये प्रभुपाद जी की एक दूर दृष्टि है और एक प्रकार का सुझाव है विश्व को वैकुंठ बनाने का। और अब हमारे पुस्तक में लिखा है कृष्ण भावना आंदोलन और वर्ण आश्रम का आपस में क्या संबंध है। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारा कृष्ण भावना अमृत संघ इतना अति उत्तम है, बहुत अच्छा है, आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको जो जो कार्य करना आता है, अब इस वक्त जो कार्य उसको करना आता है उसी से भगवान कृष्ण की पूजा करें, जो फल है भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें, इसके द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सब सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। और फिर एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में नारद पंचरात्रा से दिया है इस वैदी भक्ति की परिभाषा। पहली परिभाषा हमने दो पढ़ी, एक पढ़ी भक्ति रसामृत सिंधु से, दूसरी परिभाषा पढ़ी चैतन्य चरितमृत से। ये तीसरी परिभाषा है वैदी साधन भक्ति की पंचरात्र शास्त्र से। सुर ऋषे विहता शास्त्रे हरे मुदिश्य वा क्रिया या क्रिया सैव भक्ति इति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। सुर ऋषि नारद विहता शास्त्रे, जो शास्त्र में नियम बनाए हैं, हरिम उद्देश्य वा क्रिया, हरि के सेवा के लिए जो कार्य किया जाए मन और इंद्रियों से, सैव भक्ति इति प्रोक्ता उसको भक्ति कहते हैं, तथा भक्ति पराभवेत जिसके द्वारा भाव भक्ति का उदय होता है। पराभक्ति भवेत का मतलब प्रेम और भाव भक्ति जिससे प्रकट होती है। तो ये एक और परिभाषा दी गई है वैदी साधन भक्ति की। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब आप चाहें तो जहां हमने कल छोड़ा है वहां से एक बार पढ़ के पूरा कर ले, तो फिर हम आगे दूसरे अध्याय में प्रवेश करने का प्रयास करें। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है अभी तक? हरे कृष्णा, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा।
प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलो बेटा।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है,
इसको छोड़ दो, ये विषय ही आज मत ले आओ, ये विषय 15 दिन के बाद भी नहीं आएगा। इसको अभी अभी खाम खा आप जो पढ़ा है इसी के विचार करो। तो प्रेम और भाव भक्ति बहुत दूर की बात है भाई, दिली दूरस्त। वैदिक साधन भक्ति को पहले ठीक समझने में हमारे को नहीं तो भी 15 क्लास से ऊपर लगेंगे।
क्योंकि आपने जैसे बताया था ना कि हमें गुरु से साधन भक्ति के माध्यम से भाव भक्ति में अग्रसर होना है।
नहीं, तो साधन भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति को जागृत करना। हाँ, तो इसका क्रम, इसका क्रम है, अंतिम अध्याय में इसका क्रम है। आदो श्रद्धात् सदु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ऐसे क्रमे क्रमे एक के बाद एक होगा। अभी हमारी स्थिति ये है कि कुछ आदो श्रद्धा में है, कुछ साधु संग में है, कुछ भजन क्रिया में है और कुछ अनर्थ निवृत्ति में। यहाँ से ऊपर कम से कम इस क्लास में जो हमारे पढ़ रहे हैं इनमें से ऊपर निष्ठा तक कोई भी नहीं है हमारी नजर में, अनर्थ निवृत्ति में सब अटके हुए हैं। कोई भाग्यशाली हो तो हो, हम तो नहीं है।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी, दंडवत प्रणाम।
आपने प्रभुपाद ने एक श्लोक और लिया है 11वें कैंटो का।
हाँ, दो मैंने, हाँ 11 का पढ़ा ना, जो 2 श्लोक है, 2 और 3 शायद।
वो आपने पढ़ा था,
आपको वो श्लोक दोबारा चाहिए क्या?
ये श्लोक नहीं पढ़ा था आपने, पढ़ा था 11:5-2:3।
हाँ, 11:5-2:3 पढ़े थे बराबर।
11:27-49 है, जिसमें उधर से वचन दे रहे हैं श्री कृष्ण।
11:49 में एवं क्रिया योगः पथैः पुमान वैदिका तांत्रिकः अर्चन उद्यतः सिद्धिम मतो विन्दते अभीप्सितम्। ये है श्लोक। मेरी पूजा, मेरी सेवा नाना प्रकार से जैसे वेदों में और तंत्र शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा और मनुष्यत सिद्धि को प्राप्त करेगा इस जन्म में और दूसरे जन्म में। इसका मतलब है वैदी भक्ति जो इस श्लोक में कही गई है उसमें अर्चन और दूसरे बहुत अंग हैं, और इसका इसकी पुष्टि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी 2:3:10 में भी हुई है।
ठीक है।
अब वैदी भक्त, वैदी साधन भक्ति का फल क्या है? इति इति असौ स्याद विधि नित्यः सर्ववर्ण आश्रम आदिशो नित्यत्वेऽपि अस्यः निर्णितम् एकादश्यः आदि आदिवत्त फलम्। कोई वर्णाश्रम में है या वर्णाश्रम से बाहर है, वो अगर जो भगवान की सेवा के नियम बताए गए हैं, नित्य नित्य असौ विधि स्यात्, जो विधि यहाँ दी गई है नित्य उसका पालन करेगा और उसके नियमित शास्त्रों के मर्यादा में रहेगा, नित्यते अपि अस्य निर्णताम शास्त्रों के मर्यादा में रहेगा, तो उसको सब फल मिलेंगे जैसे एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। शास्त्र कहता है भगवान की पूजा अनिवार्य है, निश्चित रूप से करनी चाहिए, कोई नहीं नहीं कह सकता है। और यह भी शास्त्र कहता है पूजा नहीं करेगा तो पाप लगेगा, प्रतिवाय लगेगा। परंतु साथ साथ में शास्त्र में कर्म के फल की इच्छा वाले विधि विधान भी बताए गए हैं। जैसे एकादशी का भौतिक फल भी है, आध्यात्मिक फल भी है। तो आगे हमको एक बात दोबारा सुनने को मिलेगी कि ये भौतिक फल कोई भक्ति के लिए नहीं है, परंतु लोगों को भक्ति में लाने के लिए ये गौण रूप से उनको प्रेरणा दी गई है कि भक्ति में लगे, परंतु ये मुख्य फल नहीं है। और फिर ये अभी जो पढ़ा पंचरात्रा का श्लोक, सुर ऋषि वेता शास्त्रे हरिम उदिश्य या क्रिया सैव भक्ति इति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। और इसको वैदी भक्ति कहती है जिसके द्वारा भाव भक्ति का उदय होता है। यहां हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में इतना ही है। वर्ण आश्रम का जो है ये विशेष विस्तार शिला प्रभुपाद जी ने अपनी टीका के रूप में इस पुस्तक में दिया है। आप वर्ण, आपको या तो 5-10 मिनट दे दूं, वर्ण आश्रम के विभाग पूरे को आप पढ़ लीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये दो पेज कल हमने छोड़े, चार पेज है जो अब पूरे हो रहे हैं हमारे, हमने पूरे कर दिए हमारी तरफ से। किसी का कोई, किसी ने पहले पढ़ा था, आपको 5 दिन मिलते हैं पहले कम से कम, अब नेक्स्ट क्लास के लिए तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ के तो रखना, तो आपको पहले समझ में आसानी से आएगा, फिर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो नहीं आए वो निकाल के रखो। तो अभी आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है इस विषय में?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे अध्याय 2 के पहले पेज में है कि हम भक्ति हम कहीं से भी छोड़ेंगे तो अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होगी।
हाँ जी,
तो हमें इस चीज की कैसे गारंटी रहेगी कि हमारा जो अगला जीवन होगा वो मनुष्य जीवन होगा या जीव जीवन होगा, तो कैसे पता?
ये अगर आपको याद हो तो पहले ही आमुख में हमने पढ़ा था कि भक्ति के रस को पान करने वाले को कम से कम मानव जनुष जरूर मिलेगा, जबकि भौतिक रस वाला भले अभी प्रधानमंत्री हो तो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ला बन सकता है, परंतु भक्ति के रस पान करने वाले को कम से कम मानव जन्म तो निश्चित रूप से मिलेगा। ये हमारे आमुख में हमने पढ़ा था रस की परिभाषा में। आवाज नहीं। और किसी पशु जूनी में भी कया तो भक्ति नहीं जाएगी, जैसे भरत महाराज की हिरण की जूनी में भी भक्ति नष्ट नहीं हुई।
किसी भी भक्ति हो, चाहे साधन भक्ति, चाहे भाव भक्ति, चाहे प्रेम भक्ति,
भक्ति कोई भी भक्ति का मतलब, प्रेम भक्ति वाला तो कभी वापस आएगा नहीं, दूसरा जन्म लेगा ही नहीं, उसका वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भाव भक्ति वाला हो सकता है जन्म ले ले, लेकिन फिर भी उसके जन्म में सब शुभ और मंगल होगा। साधन भक्ति वाले को भी कोई कमी नहीं है, साधन भक्ति वाले कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, परंतु यहाँ है अज्ञात सुकृति जो है ना, उसके लिए बहुत जन्मों का जो आप वर्णन कर रहे हैं ना, वो है वर्णन है भक्ति जनित सुकृति। अभी भक्ति की नहीं थी, भक्तों की सेवा की थी, भक्तों के काम किसी काम में आए थे, वो एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलते चलते उसको भक्ति में थोड़ी, भक्ति के शास्त्रों में और भक्तों के संग में रुचि पैदा करेगा।
प्रभु जी, जैसे अभी 4 वर्ण का आपने बताया, उनके सबके अलग अलग कार्य हैं।
हाँ जी।
तो ये जो आश्रम है इनके भी कार्य हैं, सन्यासी वानप्रस्थ।
हाँ जी बिल्कुल, इनके भी अपने अपने मर्यादाएं हैं। ब्रह्मचारी का तो आप भगवद गीता में आप पढ़ के आए जो चौथे अध्याय में यज्ञ है, ब्रह्मचारी का यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है, वो अध्ययन करेगा शास्त्र का। ब्रह्मचारी का गृहस्थ का अपना यज्ञ है इंद्रियों को संयम में रखने का, वानप्रस्थी का तपस्या का यज्ञ है, सन्यासी का भ्रमण करके प्रचार करने का कार्य करना है। इसमें ग्रस्त के ऊपर सबसे ज्यादा दायित्व है, तीनों आश्रमों का भार है ग्रस्त के ऊपर। चारों आश्रमों को जन्म ग्रस्ती देता है, सन्यासी ब्रह्मचारी भी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, पिता की उंगली पकड़ के चलता है। तीनों और आश्रमों को, चारों आश्रमों का पालन पोषण भी ग्रस्त करता है। सन्यासी को दक्षिणा देता है, ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, और नहीं आप इसको ऐसे नहीं समझे, वैसे ऐसे समझे कि राजा को कर देता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देता है और शूद्र को वेतन देता है। ये तीनों भी तो ग्रस्त ही कर रहा है,
लेकिन प्रभु जी इन तीनों से वो सेवा भी तो लेता है।
तो सेवा लेता है, लेकिन चलाता तो है उनको, नहीं तो खाएंगे कहां से वो? वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्या सेवा लेता है सरकार को? तो वेतन देता है, सरकार उनको सुविधा देती है, सुरक्षा देती है। और सेवक को वेतन देता है, सेवक को 100 रुपया देता है, 500 रुपये का काम लेता है जी, नहीं तो कहां से देगा? पर एक को नहीं देता है, इसलिए दुनिया दुखी है, वो ब्राह्मण को नहीं दे रहा है। ब्राह्मण की जो दक्षिणा है उसको सारा गृहस्थी आज संसार में खा गया, इसलिए वो पैसे या वकील के पास या अस्पताल में जाएंगे, या डाकू या चोर ले जाएगा, नहीं तो कुछ न कहीं जाएंगे। ये सेवा का धन जो है, ब्राह्मण का मतलब भगवान की सेवा में लगे हुए जो हैं, उनको लोगों ने देने में कंजूसी की है। नौकर तो जो जो वर्कर है वो तो हड़ताल करके ले लेगा, नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, सरकार डंडा मार के ले लेगी जब लेना चाहे तो। ब्राह्मण जो है वो सेवा कर, वो तो केवल मार्गदर्शन करता है, कभी मांगता नहीं है। ये वेद की मर्यादा ये है, अयाचक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मांगता नहीं, वो सेवा ही करता है समाज की। उसके प्रति सद्भावना जब तक नहीं आएगी तब तक समाज में कोई भी व्यक्ति सुखी और प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ये फिर भी अभी भारतवर्ष में साधु संत का थोड़ा सम्मान है, नहीं तो उनको भिखारी समझते हैं, और प्रायः लोगों में वो वैसा अभी लक्षण भी नहीं है जो होना चाहिए साधु ब्राह्मण का। दोनों तरफ से हानि हुई है, ऐसा नहीं है कि केवल देने वालों में हुई है, लेने वालों में भी योग्यता नहीं है, परंतु सदा के लिए देने वाला भी कुछ है और सदा के लिए योग्य व्यक्ति भी हैं। ये कृष्ण भावना के इतने बड़े केंद्र बन रहे हैं, इतने बड़े कार्य हो रहे हैं, ये कोई तो दे रहा है ना, ये आप लोग ही तो दे रहे हैं गृहस्थी, और वो इसका सदुपयोग कर ही रहे हैं ना।
तो प्रभु जी हम लोग जैसे भक्ति करते हैं, चार नियमों का पालन भी कर रहे हैं, और मतलब यथा स्वरूप हम लोग दान भी करते हैं, और अब इस फोन से भी जुड़े, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम किस स्तर पे हैं भक्ति के? 16 माला करते हैं, एकादशी करते हैं,
भजन क्रिया पे ऊपर है।
अच्छा,
ये भजन क्रिया चल रही है, इसके बाद अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी, फिर जो है फिर अनर्थ चले जाएंगे, अपराध चले जाएंगे, आस्ते आस्ते पाप तो चले गए, इससे पाप चले गए, अब अपराध जो है वो आस्ते आस्ते जाएंगे, अनर्थ जाएंगे आस्ते आस्ते।
तो वो अनर्थ में क्या होता है?
ये अभी यहाँ का विषय नहीं है, वो पूरा पुस्तक ही अलग है, अनर्थ क्या होते हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, ये मधुर कांदमनी पुस्तक का विभाग है।
थोड़ा सा प्रभु जी 1%
बड़े बड़े से बड़ा अनर्थ है नाम अपराध।
अच्छा,
वो इसमें आएगा, जो नाम के प्रति, नाम के बल के ऊपर पाप करना, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना, भगवान का नाम और देवताओं का नाम बराबर, ये 10 नाम अपराध है, ये सबसे बड़ा भारी जो है नियम है। वो बहुत से अपराध है, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, ये आएगा, एक विभाग आएगा आगे, इसमें एक अध्याय पूरा है उसके ऊपर। अनर्थ बहुत से हैं, साधन में अनर्थ है, नाम जपते हैं लेकिन उसमें उनमें मन नहीं लगता है, कभी नींद आती है, कभी आधे में छोड़ देते हैं, ये बहुत सारे उसमें त्रुटियां रहती हैं। फिर भी हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामान्य लाखों में कोई एक होगा जैसे आप कर रहे हैं ऐसे करता हूँ।
हरे कृष्ण भाई।
हाँ हरे कृष्ण व्यास जी, आप आए नहीं, दवाई नहीं आई, बोलिए।
हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम,
दंडवत दंडवत, बिना दवाई के।
हरे कृष्ण।
हाँ जी हाँ जी,
प्रभु जी, अभी आपने बताया कि ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
हाँ जी।
तो ब्राह्मण अगर मान ली अपनी किसी कार्य में लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है या कृषि कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो क्या ऐसे ब्राह्मण को भी भोजन कराना उचित है या ठीक
आप,
है?
आपने पहले लिखा है कि जो कर्म कर जो पहले लिखा है जो प्रचार करे उसको कराना है, जो वेद का पराज प्रचार करे ब्रह्म का, किताब में पढ़ के देखिए लिखा है, जो वेद जो शब्द ब्रह्म का प्रचार करता है उसी को भोजन कराना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण के गुण है उनको कराना चाहिए, जन्म से ब्राह्मण नहीं, गुण से जो ब्राह्मण है,
गुण से ब्राह्मण,
गुण से और कर्म से, गुण सतोगुण हो और कर्म उसके, पढ़ाना पढ़ना यज्ञ करना कराना दान देना दान लेना, और भगवत गीता में जो उसके गुण है, शास्त्र का अध्ययन करना, संयम में रहना, इंद्रियों को वश में करना, ऐसे नाम का ब्राह्मण नहीं काम का ब्राह्मण होना चाहिए, जो कथा कीर्तन भगवान के भजन करते करे हैं, बेचारे कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो कुछ नहीं करते हैं, नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, आपके जो है जो भी तिथि व्यवहार पूछने जाते हैं उसके लिए सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं लोग, आज भी ये मर्यादा चल रही है संसार में।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
और ब्राह्मण के स्थान पे अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को श्राद्ध के लिए भोजन कराया था। हाँ जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी,
डेफिनेशन ऑफ वैदिक भक्ति के आपने तीन ग्रंथ बताए थे, तीसरा कौन सा बताया था इसकी डेफिनेशन
आपने? इसमें हमारे में पहले भक्ति रसामृत सिंधु का है सीधा एक परिभाषा जो प्रभुपाद ने दी है,
yes,
और yes. एक भक्त एक चेतना चरितमृत से हमारे स्लाइड में आपने देखा था।
हाँ जी, हाँ, तीसरा
जो लास्ट में दिया हुआ है पंचरात्र से, जो अंत में आपने हमारे पुस्तक में देखी लास्ट में लिखा हुआ है, श्लोक नहीं है लेकिन लास्ट में ये लिखा होगा
पंचरात्र।
नारद पंचरात्रा में देखो, अपने पुस्तक के लास्ट पेज में लिखा है, नारद पंचरात्रा में ये भक्ति के लिए कहा गया है।
ठीक है भाई, थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु।
हाँ हाँ,
हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु।
हाँ जी बोलिए बोलिए प्रभु।
आज के इस कलयुग के युग में वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हुए क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं?
देखो, अपने आप में वर्ण आश्रम जो है भक्ति उसके ऊपर आधारित नहीं है, परन वर्ण आश्रम को चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बाहर कहा था, ये बाहर है इससे आगे बोलो, क्यों नहीं स्वीकार किया था भक्ति में? क्योंकि ये अभी तीनों गुणों के अंतर्गत है, वर्ण आश्रम तीनों गुणों के अंतर्गत है, ब्राह्मण सतो गुण में है, क्षत्रिय थोड़ा सतो प्राय रजो में है, वैश्य तमो और रजो में है, और शूद्र पूरा तमो गुण में, तो ये क्योंकि गुणों में है इसलिए भक्ति के दायरे से बाहर है, परंतु ये भगवान की सेवा करेंगे तो ये फिर आगे भक्ति में लग सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने दैवी वर्ण आश्रम शब्द का उपयोग किया
जी।
उन्होंने अपने पूर्वज भक्ति विनोद ठाकुर गोरदेव किशोरदास बाबा जी की तरह बाबा जी वेश नहीं लिया, संन्यास का वेश लिया जो वर्ण आश्रम के अंतर्गत आता है, और प्रभुपाद जी भी अंतिम दिनों में कहा कि मेरा आधा काम रहता है देवी वर्ण आश्रम की स्थापना करनी है। तो कृष्ण प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम वर्णों के नामों को छोड़ दो, जो आपको कार्य आता है वो कृष्ण की सेवा में कर लो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभुपाद जी का पहले मनोवृत्ति थी कि हम भक्ति शुद्ध सिखाएंगे, सारे सबको वर्ण आश्रम से ऊपर वैष्णव बना देंगे, परंतु अंतिम दिनों में प्रभुपाद ने देखा कि ऐसा संभव नहीं लग रहा है, लोगों को वर्ण आश्रम की शिक्षा देना अति आवश्यक है, और उस वर्ण आश्रम को देवी वर्ण आश्रम, प्रभुपाद ने वृंदावन में बहुत वर्ण आश्रम के ऊपर बोला है, छोटा किताब छपा था, प्रभुपाद जी कहते मैं मंदिर में आरती करके पोचा लगाता हूँ, ये काम तो शूद्र का है लेकिन मैं सन्यासी हूँ ये करता हूँ। तो माँ है बच्चे का जो है मल मूत्र धोती है, काम तो शूदर का है लेकिन माँ करती है, तो इससे कोई शूदर नहीं हो गई, तो देवी वर्ण आश्रम का मतलब सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। वर्ण आश्रम कृष्ण भावना में आवश्यक है हमारे, दे ये कृष्ण भावना ही केवल है जिसमें वर्ण आश्रम को स्वीकार किया है। मेरा आवाज
कट रहा है कृष्ण प्रभु जी?
अब मेरा आवाज नहीं है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए।
हमारी अनर्थ निवृत्ति कब शुरू होती है?
मैं नहीं कह सकता हूँ, हरेक का अपना अपना है, ये इसका लिए कोई नाप दंड नहीं है। हृदय में जब भगवान के नाम में निष्ठा हो जाए कि इसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे और थोड़ा सा अंदर में सुख आने लगे तो समझो कि अनर्थ निवृत्ति हो गई है। और उसके लिए साधन सबसे बड़ा और सबसे मुख्य है भागवत का रोज श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवया भक्तिर्भवती नैष्टिकी, नष्ट प्रायेषु, सारे अपराध प्राय नाश हो जाएंगे भागवत का रोज श्रवण करने से। साधन ये मैं जानता हूं, अब आप कितना हम करते हैं कितना उसका लाभ लेते हैं ये मालूम नहीं।
जी प्रभु जी।
वैसे अनर्थ निवृत्ति में बहुत से बहुत अधिक समय लगता है। हरे कृष्णा।
रक्षा प्रभु जी।
हाँ, तीसरे दूसरे अध्याय का कोई प्रश्न आपका है, जिज्ञासा है?
हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ जी बोलिए।
प्रणाम। हरे कृष्ण।
हाँ जी,
हाँ जी बोलिए प्रभु। जैसे प्रभु आपने जैसे बताया कि प्रभुपाद चाहते थे उनके लास्ट दिनों में कि वर्णाश्रम का सब लोग पालन करें, वर्णाश्रम का फिर से स्थापना हो, तो और ये वर्णाश्रम एक आवश्यक चीज है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो प्रभु अभी हालात के हिसाब से तो अब ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम तो कभी स्थापना नहीं हो पाएगी।
आशावादी तो, आशा बंद जो है भक्ति के भाव, भक्ति में आशा बंद एक लक्षण है, जो नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होने असंभव मूर्ख के कोश में शब्द होता है प्रभुपाद जी ने कहा। अभी भी हमारे पास नंदगांव में, नंदगांव ग्राम के नाम से पढ़े लिखे आईआईटी के लड़के बिना लाइट के अंदर अपनी खेती करके अपना अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और दक्षिण भारत में ऐसे 4-5 गांव ऐसे बना के वर्णाश्रम के नमूने से रहने का प्रयास चल रहा है भारत में और बाहर भी। और ऐसे जो कोरोना जैसी महामारी और समय चली ना, लोग भूख मारी करेंगे, जिसके पास खेत और जमीन अपनी और गाय होगा वही सुखी रहेगा, वो बाकी भूखे मर जाएंगे। एक थोड़ा सा ये ट्रेलर है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हमारे अपने बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर अपना, हमारे खेत होंगे, गाय होंगी, तो ये लोग भूखे मरते हुए हमारे पास हाथ जोड़ के आएंगे, नेमू का पालन करके उधर रह के सेवा करके खाएंगे, ऐसा भविष्य में होना संभव है और ऐसा होगा। इसलिए जिसको भगवान ने थोड़ा धन सामर्थ दिया है, कहीं जमीन जायदाद लेके, धरती लेके, धरती लेके रखो, गाय लेके रखो, जिसके पास गाय और धरती होगा वो कृष्ण से जुड़ा रहेगा, बिना गाय और धरती के ये फ्लैटों में रहने वाले कृष्ण को बहुत दूर हो गए। इसलिए ऐसा समाज में बनाना पड़ेगा, 10 लोग आपस में मित्र बनो। आज आपका गुड़गांव में हर एक का फ्लैट नहीं तो भी 2 करोड़ से ऊपर का है, 1-1.5 करोड़ का है, और वहां से 25 किलोमीटर दूर जाके 10 एकड़ जमीन ले लो, अपना बड़ा खुला बंगला बना दो, और वहां से एक गाड़ी में सब काम के लिए आओ, और वहां अपनी खेती के लिए आदमी रख लो, कम से कम गाय अपनी का दूध पियोगे, खेत अपने का चावल खाओगे, अपना गेहूं खाओगे, कम से कम तो ये तो मालूम होगा जहर नहीं खा रहे हैं, और सब साथ भी रह सकते हैं। ऐसे योजना बनानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल किसी न किसी को बनानी पड़ेगी, इस मुश्किल से निकलना पड़ेगा। रोज काय के लिए इतनी सारी गाड़ी लाने की जरूरत है? एक गाड़ी में 10 लोग आएंगे, अपना अपना काम करेंगे, शाम को वापस चले जाएंगे, पहले तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर रहेंगे, अपना खाना पीला मिले, बाकी चीज इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। लेकिन ये करने के लिए हर मंदिर को, प्रभुपाद जी ने तो कहा था हर मंदिर के साथ एक खेत, एक जमीन होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए, मंदिर की आवश्यकता, भगवान की सेवा का सब अनाज, दूध दही घी सब अपने 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 खेत से आना चाहिए, अपने वर्ण आश्रम व्यवस्था से आना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन हमारी होनी चाहिए अपनी। अभी कुछ भी हमने, प्रभुपाद ने गुरुकुल खोले, हम अभी तक नहीं चला पा रहे, क्या करें।
जी
हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी जैसे वैधि विधि वैधि साधन भक्ति और रागानुगा में प्रभु जी रागानुगा बहुत बेटर हुई ना उससे, कि रागानुगा में तो हम सब कुछ लव के लिए कर रहे हैं और उसमें हम सिर्फ एज अ ड्यूटी कर रहे हैं,
तो दोनों में आगे जाके प्रेम तो दोनों को मिलेगा, दोनों के प्रेम का पता जगह अलग हो जाएगी, लेकिन दोनों को, अब मैं आप इसको ऊपर नीचे बाद में कहें, मैं कहता हूं वैदी साधन भक्ति का आचार्य है नारद। अब नारद छोटा है क्या? नारद की तुलना किससे करोगे? वैदी साधन भक्ति का आचार्य, साधन नहीं वैदी प्रेम, नारद उसका आचार्य है। तो वैदी कोई साधन भक्ति वैकुंठ तक ले जाने वाली है, द्वारका तक ले जाने वाली है। राग अनुगा केवल 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 भगवान के गोलोक धाम की है। वो राग अनुगा उनमें भी प्रेम होता है, उसमें भी प्रेम है, दोनों में प्रेम है, परंतु एक सिर्फ कृष्ण के गोलोक में ले जाने वाली है राग अनुगा, वैकुंठ द्वारका आदि में ले जाने वाली है वैदी साधन भक्ति।
प्रभु जी भक्ति का मेन पर्पस तो यही होता है ना, कृष्णा के लिए लव डेवलप करना, तो रागानुगा में तो हम पहले ही आउट ऑफ लव ही हम सब कुछ कर रहे हैं ना, जैसे मंगल आरती में जाने की रुचि है, और अभी वैदी भक्ति में तो जबरदस्ती जाना पड़ रहा है ना कि गुरु की वो है।
सारे ही वैदी भक्ति करते हैं, रागानुगा कोई कई जन्मों से पहले करके आया तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई रागानुगा सब कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, कर भी रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है। तुलसी पूजा करते हैं उसमें रागानुगा भाव है, हमको वृंदावन का वास दो, कुंज निकुंज का वास दो, हम जानते नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं वेदी का साधन, हम रागनों का साधन कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब रागनोदा का आप अभी चर्चा करेंगे तो 6 दिन चलते रहेंगे, तो कुछ हमारा वेदी इधर रह जाएगी, जब रागनोगा में पहुंचेंगे तब उसका चर्चा करेंगे। ऊपर नीचे कोई नहीं है, भक्ति सारी उत्तम है, वैकुंठ में रहने वाले कोई कम थोड़ी है। नारद उसका उदाहरण है, नारायण उसका आराध्य देव है।
प्रभु जी एक प्रभुपाद ने ना एक कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे ना, कि जैसे क्षत्रिय सन्यासी जो है दे हैव आल्सो कम आउट फ्रॉम हेड एंड ब्राह्मणास भी, और वानप्रस्थ फ्रॉम द आर्म्स एंड क्षत्रियस, तो इनमें हम क्या रिलेट करना चाहते हैं कि मतलब वानप्रस्थ दे आर लाइक क्षत्रियस और इसमें ब्रह्मचारी, मतलब इसमें कोई रिलेशन है आश्रम और वन में, ये जो प्रभुपाद ने
इसमें ये श्लोक में है, ये श्लोक में लिखा है, इसका ये है कि जो सन्यासी सर है इसका मतलब सबको मार्गदर्शन कराएगा, सबको शिक्षा देगा, और ब्रह्मचारी सेवक है वो तो गुरु के आश्रम में सेवा ही करेगा, तो वो जैसे शूद्र सेवक उसका काम सेवा है, और जो ग्रस्त है वो तो उधर की तरह है सबका पालन पोषण करेगा, और जो वानप्रस्थ है वो क्षत्रिय की तरह तपस्या करने के लिए वन में चला जाएगा, उसको परवाह नहीं है, भगवान के भरोसे रह सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है, इसका अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं, परंतु ये उत्पत्ति का वर्णन ऐसे किया है उस श्लोक के आधार पे।
थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम
प्रभु जी। हरे कृष्ण, सबने पढ़ लिया, इतना टुकड़ा पढ़ लिया।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, इज देयर एनी लेक्चर ऑफ योर्स इन अनर्थ निवृत्ति?
मेरे ख्याल में अनर्थ निवृत्ति के ऊपर एक बार, मैंने तो अनर्थ निवृत्ति नहीं दिया, मेरा तो निष्ठा के ऊपर था, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के ऊपर एक, ये सारे अंगों के ऊपर एक बार नोएडा के मंदिर में सेमिनार था, बहुत से लोगों ने दिया था, कहीं ना कहीं मिल सकता है। अनर्थ निवृत्ति मेरे को, मैं समझता हूँ गौरंगा प्रभु ने दिया था या भक्ति रसामृत महाराज ने दिया था, उसमें हर एक को एक एक अंग दिया था, मेरे पास निष्ठा का अंग था।
ओके तो प्रभु जी आपका निष्ठा वाला जो लेक्चर है वो हमें प्रोवाइड हो सकता है क्या?
पता नहीं कहाँ होगा, मुझे भी मालूम नहीं, कहीं मेरे पास एक दो शायद किसी ने मेरे को दिए थे, मैं देखूंगा नेट पे होंगे कहीं। और वैसे इसके ये पूरा एक कोर्स है मधुर कदंबनी, उसके अंदर इनके ऊपर सारा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का शिक्षा है कि कैसे हम आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक क्या क्या स्तर कैसे कैसे आते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हाँ जी,
वो ये मेरा छोटा सा रह गया था, पाप
पाप और अपराध में, पाप और अपराध में क्या अंतर है?
पाप पूर्व जन्म के होते हैं
जी,
और पाप करने की प्रवृत्ति भी पूर्व जन्म से आती है जी। अपराध अब हम करते हैं
जी,
अपराध प्रायः हमारे पास जब अपराध शब्द आता है ना, वो सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध। सेवा, भगवान की सेवा में अपराध, धाम में अपराध, पूजा में अपराध, नाम में अपराध, ये अपराध है। ये क्लेश घनी के साथ नहीं आते हैं
जी।
ये अपराध हमारी भक्ति में भाव तक चलते हैं, भाव में भी थोड़ा अपराध रह जाता है, विशेष रूप से वैष्णव अपराध रह जाता है, भारी अपराध रह जाता है। भाव के स्तर से ऊपर प्रेम में अपराध शून्य होता है, पाप शून्य तो हो जाते हैं साधन में ही। प्राय ये चार पाप कर्म छोड़े ना, चार नियम पालन कर रहे पापों के कारण, ये तो पापों के कारण था, ये तो चला गया
जी।
परंतु अपराध चलते रहते हैं साधन के साथ, अपराध थोड़े थोड़े होते रहते हैं। प्राय वैष्णव निंदा अधिक होती है
जी।
हरे कृष्ण। तो हम तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ कर लेते हैं, आप थोड़ा सा आधा घंटा कर लेते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है आप लोग?
हरे कृष्ण जी।
हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी बोलिए
प्रभु जी। मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि जैसे आपने बताया कि हम सब भजन क्रिया के स्तर पर हैं, कुछ श्रद्धा के स्तर पर।
देखो ये भक्ति रसामृत सिंधु का प्रश्न नहीं है, आप इस झंझट में पढ़ रहे हो, इससे आपका ये कोर्स में कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी अपनी नजर में 10% तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं कि भाव
मेरा प्रश्न ये
था। हाँ
मेरा प्रश्न ये था कि हमें कैसे चलेगा कि हम कौन स्तर पर हैं, मतलब
पहले पता ही नहीं अनर्थ क्या है, तो अनर्थ निवृत्ति का पता कैसे लगेगा? जब अनर्थ का ही पता नहीं है तो उससे निवृत्ति का पता कैसे लगेगा, बताइए? हमें अनर्थ का ही पता नहीं है तो उसके निवृत्ति का पता कहां से लगेगा? इतना है कि कम से कम रोज मंदिर में 10 नाम अपराध की बात कहते हैं, उन अनर्थों से बचने का प्रयास करें तो काम हो जाएगा।
भक्ति जैसे बताया कि हमें ब्राह्मणों को जैसे भोजन कराना चाहिए, तो जैसे मैंने एक बार ये पढ़ा था कि जो वैष्णव होता है इन चारों से ऊपर होता है, तो हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए, मतलब वैष्णवों की सेवा, उनको घर में बुलाना, प्रसाद खिलाना।
हाँ ठीक है, ब्राह्मण वैष्णव एक ही बात है, वो ब्राह्मण पहले ब्राह्मण बनेगा फिर वैष्णव बनेगा, पहले ब्राह्मण के लक्षण होंगे तब वैष्णव बनेगा।
तो प्रभु जो ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो गुणों से मतलब ब्राह्मण है।
हाँ जी,
थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, जैसे हमारी स्थिति तो एक शूद्र की है ना, सेवक की, तो फिर हम भी आगे आगे कंडीशन में वैष्णव क्षत्रिय और फिर जाके ब्राह्मण की कंडीशन में आएंगे?
देखो हमारी स्थिति, हम जब दीक्षा लेते हैं भगवान की सेवा में लगते हैं तो वर्णों आश्रम से ही ऊपर उठ जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं, फिर भी हमारा शरीर जो है ना, इसका वर्ण आश्रम के अंतर्गत काम होगा। हमारे स्वधर्म है दो प्रकार के, एक शरीर का स्वधर्म है वो वर्ण आश्रम के अंतर्गत है, एक आत्मा का स्वधर्म है वो सबका भक्ति है। तो हम आत्मा का सबका स्वधर्म एक ही है जो हम कर ही रहे, परंतु शरीर का स्त्री का अलग धर्म है, पुरुष का अलग धर्म है, डॉक्टर का अलग शरीर का धर्म है, इंजीनियर के शरीर का धर्म अलग है, व्यापारी का अलग है, किसान का अलग है, तो वो उसको वर्ण आश्रम कहते हैं। तो हमारे पास तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है भक्ति में, तो आत्मा के स्तर पर भक्ति है, वो स्वधर्म सबके लिए एक जैसा है, उसमें दो स्वधर्म है ही नहीं, एक है। दूसरा स्वधर्म शरीर का है, वो सबका अलग अलग है। अगर हम सेवक हैं, मंदिर के अंदर झाड़ू निकालते हैं तो भी भगवान हमारे को उतना ही प्रेम करते हैं जितना पुजारी उनकी अर्चन करता है। मानो एक व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता है, भगवान के मंदिर का झाड़ू निकालता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है
जी। तो प्रभु जी ये जो धर्म है ये हमारे शरीर के सतर पे ही है, अगर हम दीक्षा ले लें तो फिर हम मतलब इनसे सबसे ऊपर उठ जाते हैं।
फिर भी शरीर तो अपना काम करेंगे, जब तक शरीर है तब तक शरीर का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है, शरीर के साथ जो हमारे अंदर योग्यता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, जो हमारे अंदर काम करने का कला है, वो सब भगवान की सेवा में लगाना है, तो फिर वर्ण आश्रम से ऊपर हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा आवाज आ रहा है? हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का नाम है उत्तम भक्ति को स्वीकार करने का अधिकार। कौन है अधिकारी भक्ति के लिए? पात्रता, पात्रता कहो अधिकार कहो, पुस्तक में क्या लिखा है? हिंदी के पुस्तक में क्या लिखा है?
पात्रता
अधिकार पात्रता, ठीक है पात्रता है। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी ने पहले परिच्छेद में क्या लिखा है वो सबसे मुख्य बात लिखी है, किसी भगवान के महान शुद्ध 100% महात्मा का संग होने से कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न होता है। थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न होता है, फिर भले चाहे संसार के भोग में लगे हुए हों, कोई बात नहीं, भक्ति के पात्र अथवा अधिकारी हो सकते हैं। और इसके बाद कृष्ण में आकर्षण कैसे हो, इसके लिए ये श्लोक दिया है भागवत के 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। रुचि उत्पन्न होने पर वैदी साधन भक्ति का शुभारंभ होता है। तो ये श्लोक है ये, यदर्लिच्छा मदक कथा दो जात शरदस्तु यह पुमान न अना न निरवणो नाति शक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिधा। इसमें जो पहला शब्द है यदरिच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां यदरिच्छा का अर्थ है भगवान के भक्त का संग। कदाचित भगवान के भक्त का संग हो जाए तो मेरी कथा में जात श्रद्धा, मेरी कथा में श्रद्धा हो जाएगी। आप अपने जीवन में देखिए, भक्तों का संग हुआ होगा तभी आपको हरि कथा में कृष्ण कथा में रुचि हुई होगी। अब दो बातें लिखी है, न निर्वणो न अतिशक्तो, न तो बिल्कुल त्यागी हो, बिल्कुल शुष्क और त्यागी भी न हो, और न ही अधि अति आशक्त हो, तो भक्ति योग को करने का अधिकारी अथवा पात्र हो जाता है। तो आप अब दूसरी स्लाइड में देखिए, वैदी भक्ति के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चाहिए मद कथा आदो जात श्रद्धा, भगवान की कथा में श्रद्धा का उत्पन्न होना, यह अति आवश्यक है। दूसरा आवश्यक है न अति आसक्त, बहुत ज्यादा संसार के भोग में आसक्त, इंद्रिय तृप्ति में अति आसक्त ना हो। और तीसरा है न निर्वण, इतना ज्यादा संसार की जीवन से क्या कहा जाए, हताश भी ना हो और दुखी भी ना हो। क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी में क्या लिखा है जरा पढ़े?
विरक्त, बौद्धिक जीवन से भी विरक्त नहीं।
हाँ विरक्त है, लेकिन अंग्रेजी में डिसगस्टेड, डिसगस्टेड की माना होती है कि बिल्कुल दुखी हो के हताश हो गया, निराश हो गया। अब दूसरी स्लाइड में देखिए कि तीन जो है, इसमें तीनों में से कौन किसका अधिकारी है। जिसको भगवान की कथा कीर्तन में रुचि है वो भक्ति का अधिकारी है, जिसको इंद्रिय भोग में रुचि है अति आसक्त है वो कर्म का अधिकारी है, जो अति अधिक त्यागी है वो ज्ञान का अधिकारी है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति के लिए अगर ज्यादा त्याग होगा तो हृदय हो जाएगा कठोर, उसमें भगवान के भाव उत्पन्न होंगे नहीं। भक्ति में होते हैं भाव, वो पत्थर जैसा हृदय नहीं चाहिए। और अति आसक्त होगा तो भोग विलास में होगा तो भक्ति नहीं कर सकता। तो इसके उपरांत जो आपके पास स्लाइड है उसमें ये लिखा है, कृष्ण में आसक्ति, उसका अर्थ है कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन में रुचि। कहां से आएगी? यदृच्छा से आएगी। इसका मतलब भले हमारे सौभाग्य से आएगी, और हमारा सौभाग्य क्या है? दयालु भक्तों का संग, महान महात्मा शुद्ध भक्तों का संग। तो शुद्ध भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है, भले कभी कभी हम अति आसक्त हो भोग में या अधि विरक्त भी हो तो भी भक्त बन सकते हैं, ये प्रभुपाद जी का भाव है। तो ये है सारांश हमारे ये पूरे पेज का। या पूरा पेज पढ़ेंगे इसका ये सारांश है। तो आइए अब अपने पेज को एक नजर देखते हैं। तो कृष्ण में आकर्षण कैसे होता है? भक्तों के संग से, शुद्ध भक्तों के संग में। और ये कैसे होता है? बोला सौभाग्य से, यदृच्छा से। ये चेतना भाग, और प्रभुपाद जी ने एक और चेतना चरितमृत का उदाहरण दिया है। कौन सा ये उदाहरण है, कोई भाग्यशाली बता सकेगा? ये कौन सा श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं?
ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान।
हाँ जी, ये यही श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमते कोई भाग्यवान जीव, गुरु प्रसाद प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। ये है, ये प्रभुपाद ने भाव दिया है। और फिर भागवत का ये श्लोक जो अभी हमने पढ़ा ये बताया है, यह केन उपाय अधिभाग्येन जात शर्दो अस्यास्येन न अतिआसक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकारी असौ। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, जिसको भगवान की कथा में रुचि हो गई है, श्रद्धा हो गई है, कैसे हो गई है? पो भक्तों के संग से, अति भाग्य से, भक्तों के संग के द्वारा। कब हो सकता है? कई जन्मों से संग किया हो वो, न को अति आसक्त है न अति विरक्त है, तो फिर भक्ति कर सकता है। तो जो ये यदृच्छा है या अति भाग्य है, ये भक्तों का संग है और उसका प्रभाव है। और ये श्रद्धा भी भक्तों के संग से उत्पन्न होती है।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी
प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जब भगवान गुरु का कृपा हो जाता है तो हम भक्ति कर सकते हैं, और प्रभु जी इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारी स्वीकृतियाँ भी होती हैं, तो प्रभु जी इसको कैसे समझेंगे?
क्या होता है?
स्वीकृति होती है प्रभु जी हमारे पिछले जन्म
का, जन्म की स्वीकृति हुई तब भक्तों का संग मिला, भक्तों का संग मिला तो वो गुरु जी के पास ले गए, तो आपकी भक्ति शुरू हुई। हाँ जी हाँ, सबके सब वैदी भक्ति कर रहे हैं, हम सारे के सारे वैदी साधक साधन भक्ति का साधन कर रहे हैं। हमारे इस्कान में 5 अंग भक्ति चलती है, वो वैदी साधन भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ने लिखा है ये श्लोक हमने जो पढ़ा अभी, उद्धव वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसको मेरी कथा में रुचि हुई है, कोई बात नहीं, पूर्ण रूप से त्यागी नहीं है, कुछ भोग करता है, कोई बात नहीं, ये इसकी भक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी यहां से लिखता है, अब यहां तक ये पूरा हुआ, अब एक और विभाग शुरू हो रहा है। अच्छा, अब एक यहाँ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ लिखा है कि अति आसक्त न हो, तो कुछ इच्छाएं रहेंगी तो फिर भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो अन्य अभिलाषिता शून्य में, तो यहाँ आप ये समझिए, ये देख शब्द आगे आएगा, युक्त वैराग्य। भक्त भी त्याग करता है, हम भी 4 नियमों का पालन करते हैं, हम भी त्याग करते हैं, पर यह है युक्त वैराग्य, ये फलगु वैराग्य नहीं है, दिखावे वाला वैराग्य नहीं है, झूठा वैराग्य नहीं है। जो कृष्ण संबंधी चीजें हैं उनको सेवा में लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति की सेवा को चीजों को त्याग कर देते हैं। यदृच्छा का क्या अर्थ है? सब लोगों ने समझा यदृच्छा का अर्थ क्या है? यदृच्छा का अर्थ है भगवान के भक्त का संग, शुद्ध भक्त का संग। ऐसा भागवत में पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में यदृच्छा शब्द आया है, 1:19-25। वहां परीक्षित महाराज के पास अपने आप सुखदेव गोस्वामी आए हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदरिच्छा गामा आत्मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। आपके पास कुछ नहीं है, इसको मत ढूंढो, नहीं मिलेगा, नहीं है आपके पास, नहीं है। आप जहां हैं वहीं रुकिए। हरि बोल, ये क्यों ऊपर नीचे कर रहे हैं? हाँ यहां तक ठीक है, बस यहां ठीक है। हम यदरिच्छा के लिए दूसरा श्लोक बता रहे हैं और ये श्लोक है 1925 में, जिसमें सुखदेव जैसा वृक्त महात्मा जिसको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था, व्यास का पुत्र परीक्षित के पास भगवान की प्रेरणा से आया, इसको कहते हैं अति भाग्य। अब मद कथा जात श्रद्धा श्रद्धा मृत कथाया में श्रद्धा मत कथा श्रणम, ये बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें भगवान श्रद्धा की बात कहते हैं। तो हम अति आसक्त को देखा, अति निर्वण को देखा, अब एक हमने आपने लास्ट में देखो ये लाइन पढ़ा है कि कोई भले अति अति त्यागी हो या अति आसक्त हो, फिर भी भक्त के भगवान के भक्त से के संग से भक्ति में लग सकता है। ये श्लोक है 11:2:2, 11 भागवत का 11:2:2। को नु राजन इंद्रियावान मुकंद चरणाम्बुजम् न भजेत सर्वतो मृत्यो उपास्यम अमृतो उत्तम ही। हे राजन महाराज निमि, सबको संसार में मृत्यु का भय एक कदम कदम के ऊपर है, कौन ऐसा बदजीव नहीं होगा, बदजीव जो इंद्रिय तृप्ति में लगा होगा वो भगवान मुकंद के चरणों की सेवा नहीं करेगा। जिस भक्त मुकंद की सेवा उपास्यम अमर उत्तम, बड़े बड़े महात्मा करते हैं, इसका मतलब सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, ये श्लोक हमने पढ़ा, जात श्रद्धा मत कथासु, निर्वण सर्व कर्मसु, वेद दुखात्मकम काम। ये एक और श्लोक है जिसका हम बात कर रहे हैं, ये श्लोक है जात श्रद्धा मत कथासु, मेरी श्रद्धा में उस मेरी कथा में उसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई। निर्वणम सर्व कर्मेशु, सारे कर्मों से अब दिल उठ गया है, किसी कर्म में नहीं दिल लगता है। वेद दुखात्मकम कामम, वो ये जान गया है कि दुनिया के इंद्रिय भोग हमेशा दुख देता है। परित्यागो अपि अनीश्वरः, परंतु फिर भी अभी तक इंद्रिय भोग छोड़ नहीं सकता है। जुष मानस चतान कामान दुख उदकर्मास स ग्रहयाम, अभी भी त्याग नहीं सकता है इंद्रिय भोग, फिर भी कर रहा है पश्चाताप, क्या करूं ऐसे क्यों हो रहा है। तब कृष्ण कह रहे हैं साधक को, ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, सुखी रहो बड़े विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो। तो ये कोई भी है, इतना जितना हमारे पास आपको बताया ये पूरा है। अब हम जा रहे हैं तीसरे परिच्छेद में, हमारे पुस्तक के तीसरे परिच्छेद में। हमारा पुस्तक का तीसरा परिच्छेद बता रहा है, देखिए ये शब्द जो आ रहे हैं इनको थोड़ा सावधानी से समझना। इन शब्दों को बोला जाता है वैदी भक्ति के अधिकारी, तीन प्रकार के वैदी भक्ति के अधिकारी। देखो ये तीन जो अब नाम हम लेने जा रहे हैं ना, ये उपदेशामृत में भी आएंगे, भागवत में भी आएंगे, चेतना चरितमृत में भी आएंगे, परंतु ये सब समान एक जैसे नहीं है। नाम एक है लेकिन उनका स्तर अलग अलग है। यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है वैदी साधन भक्ति के अधिकारी। ये प्रेम के अधिकारी नहीं है, वैदी साधन भक्ति के अधिकारी हैं। इनका नाम है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। अच्छा, इन तीनों अधिकारियों का ये तीन स्तर कौन से आधार पे किया गया है? आधार क्या है इसका? किसी को उत्तम कहे, किसी को मध्यम कहे, किसी को कनिष्ठ कहे, तो उसके लिए आधार का है? तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं इसका आधार है श्रद्धा के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। या नहीं, पहला, इससे पहले वाला श्रद्धा के, और नीचे जाओ। हाँ, या ये पहला है। हाँ, ये श्री जीव गोस्वामी कहता है इसका आधार है श्रद्धा के ऊपर। और किसके ऊपर श्रद्धा? शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा के आधार पे तीन प्रकार के भक्तों का अधिकारी माना गया है वैदी साधन भक्ति के। देखो वैदी साधन भक्ति की परिभाषा में क्या लिखा था कि शास्त्र के अनुशासन में काम करता है, शास्त्र के अनुशासन में काम करता है। उसको कोई अपने आप स्वत आसक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि भक्ति का जो मूल सार है श्रद्धा का, वो है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। तो एक शब्द में इसको ये समझिए के वैदी साधन भक्ति के तीन अधिकारी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शास्त्र में श्रद्धा के आधार के ऊपर हैं। कम श्रद्धा कनिष्ठ, बीच वाली श्रद्धा मध्यम, उत्तम श्रद्धा उत्तम अधिकारी शास्त्र के ऊपर। अब इसके लिए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए चेतना चरितमृत से इसकी परिभाषा दी गई है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनिस्वारी। पहले तो चाहिए श्रद्धा, वो कर सकता है भक्ति, और जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसी उसकी भक्ति कहलाएगी। कोई कनिष्ठ होगा, कोई मध्यम होगा, कोई उत्तम होगा। अब उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? उत्तम अधिकारी की परिभाषा उसकी पहले ये श्लोक चेतना चरितमृत से दिया गया है। असल में शास्त्र युक्तये स्वनिपुण, शास्त्र को समझने में निपुण है, पूर्ण अच्छी तरह से शास्त्र को जानता है। दृढ़ श्रद्धा यार, और जिसके हृदय में शास्त्र के ऊपर दृढ़ श्रद्धा है। उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार, वो उत्तम अधिकारी सारे संसार को तार सकता है। ये चेतना चैतन्यमत की परिभाषा है उत्तम अधिकारी की। और भक्ति रसामृत सिंधु की अब मैं पढ़ रहा हूं श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु का उत्तम अधिकारी के लिए। शास्त्र युक्तो च निपुणो, शास्त्र के तर्क वितरक में निपुण है। श्रद्धा दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा है और पक्का निश्चय है, विश्वास है। परोढ़ श्रद्धा अधिकारी, यह जिसकी श्रद्धा परिपक्व है। सब भक्ता उत्तमो मतः, उसको उत्तम भक्त कहते हैं। अब हमारे पास पुस्तक में लिखे हैं वो उत्तम वैदी भक्ति के अधिकारी के लक्षण। आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। उत्तम वैदी भक्ति अधिकारी के लक्षण, शास्त्र युक्तो च निपुणो, पहला लक्षण है। आगे बढ़िए। शास्त्र के तर्क वितर्क में पूर्ण रूप से निपुण है। इसमें तीन बातें हैं। पहला अंग्रेज आपके पास ठीक लिखा है, पहला क्या लिखा है, शास्त्र कहा जाए प्रमाणिक शास्त्र के अध्ययन में, प्रमाणिक शास्त्र के अध्ययन में क्या लिखा है,
विशेषज्ञ दक्ष।
हाँ दक्ष अंग्रेजी में गलत है, उसको सीधा करना है, अंग्रेजी में गलत है, उसमें एक्सेप्ट लिखा है, उसको एक्सपर्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट EXEP कटा नहीं जाएगा मेरे में, ये एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट लिखना चाहिए, ये गलत लिखा है, अंग्रेजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, ये एक्सेप्ट लिखा है ये गलत है, इसको सुधारो। तो शास्त्र प्रमाणिक शास्त्र में के अध्ययन में निपुण और दक्ष, और दक्ष होना चाहिए शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क देने में, दो। तीसरा, शास्त्र के निर्णय को सही प्रकार से उपस्थित कर सके और भक्ति के में लगाने के लिए निर्णय बना सके, ये है शास्त्र के में दक्षता के तीन लक्षण। सर्वथा दृढ़ निश्चय, उसने शास्त्र के तत्व और सिद्धांत दोनों को अच्छी तरह से समझा है, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास है। शास्त्र के तत्व और सिद्धांत के ऊपर दृढ़ विश्वास। और तीसरा है परोढ़ श्रद्धा, उसमें है दो विभाग। श्रद्धा शास्त्र के ऊपर, शास्त्र में जो लिखा है उसको समझा है और तर्क वितर्क से अच्छी तरह से समझा है। दूसरी ये श्रद्धा है मुख्य है कि वो जानता है जीवन का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्त करना, और कृष्ण ही हमारे प्रेम और पूजा का एकमात्र लक्ष्य है। ये तीन गुण, ये तीन लक्षण उत्तम अधिकारी के हैं। शास्त्र युक्तौ च निपुणो, श्रद्धा सर्वथा दृढ़ निश्चय परोढ़ श्रद्धा। शास्त्र में तीन बातें हैं, दक्ष होगा अध्ययन करने में, दक्ष होगा उसको प्रस्तुत करने में, और लोगों को भक्ति में लगाने में, और शास्त्र के तत्व और सिद्धांत को समझ के उसके ऊपर पूर्ण दृढ़ विश्वास करें, और श्रद्धा में शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क से समझ के विश्वास किया हो, और कृष्ण जीवन का परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम ही, कृष्ण ही हमारी सेवा और प्रेम का एकमात्र केंद्र होना चाहिए और विषय होना चाहिए। ये है उत्तम अधिकारी के लक्षण। और कुछ और उत्तम अधिकारी के लक्षण हमारे पुस्तक में है, ये है वो। पहला, उन्होंने स्वयं विधि और निषेध नियमों का पालन किया है अपने प्रमाणिक गुरु के शरण में रहकर, बड़ी दृढ़ता से सारे विधि विधानों का पालन किया है। जैसे शास्त्रों में निर्णय निर्धारित है ऐसे गुरुजनों की सेवा की है गंभीरता के साथ। दूसरा, अब उसको अच्छी तरह से शिक्षित किया गया है प्रचार के लिए, अब वो स्वयं गुरु की सेवा करके दूसरों को प्रचार में लगा सकता है। इसका मतलब उत्तम अधिकारी प्रायः गुरु की सेवा करते हैं, इसका मतलब गुरु बनते हैं। तीसरा, वो उत्तम अधिकारी कभी भी जो हमारे परंपरा के सिद्धांत है, जो हमारे उत्तम अधिकारियों के सिद्धांत है, उससे कभी भी डेविएट नहीं होता। क्या मतलब हुआ, उससे कभी भी
विचलित
पथ भ्रष्ट नहीं होता, पथ भ्रष्ट नहीं होता। और जो वो तर्क वितर्क करता है वो शास्त्र के आधार के ऊपर होना चाहिए। केवल जलप और वितुंड का वाद नहीं होना चाहिए, झगड़े वाली बात नहीं होना चाहिए। और पांचवा, भक्ति के विषय में उसको परिपक्व विवेक हो गया है, अब वो विवेकी है, पक्के निर्णय और विवेक के साथ भक्ति के सेवा में लग गया है। यहां हमारा उत्तम अधिकारी का विभाग पूरा होता है। और हमारे पुस्तक में ये दूसरा परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद है, ये उत्तम अधिकारी का है। और दूसरे तरफ जाएंगे तो मध्यम अधिकारी आएगा। अब मध्यम अधिकारी के लिए चेतना चैतन्यमृत के अंदर है, श्रद्धा युक्ति नहीं जाने, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र में निपुण नहीं है, उसमें तर्क वितर्क करने में इतना परोड़ नहीं है, इतना निपुण नहीं है, परंतु श्रद्धा बहुत दृढ़ है, पक्की श्रद्धा है, उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, ये भाग्यवान है। और यही श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे है, यह शास्त्र आदिशु अनिपुण, शास्त्र के विषय में निपुण नहीं है, श्रद्धावान सतु मध्यम, परंतु केवल श्रद्धामान है तो उसको मध्यम अधिकारी कहेंगे। अब हमारे मध्यम अधिकारी के गुण, दो गुण हैं, एक है शास्त्र आदिशु अनिपुण और दूसरा है श्रद्धावान। आगे बढ़िए, शास्त्र आदि में निपुण जो है उसके दो विभाग हैं, उत्तम अधिकारी जितना शास्त्र अध्ययन नहीं किया है उससे कम है, और इसलिए क्योंकि इतना शास्त्र का गहन तर्क वितर्क के साथ अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वो तर्क वितर्क करने में शास्त्र के ऊपर इतना प्रवीण नहीं है और अपने मत को अच्छी तरह से निर्णय को प्रस्तुत नहीं कर सकता। दो बातें, और श्रद्धावान में एक ही बात है, अपने मन में यह दृढ़ संकल्प और विश्वास कर लिया है कि शास्त्रों का निर्णय है, क्या है शास्त्रों का निर्णय, कि भक्ति ही करनी है, भक्ति के साधन कोई अपनाना है, और भक्ति का साधन हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण है और वही हमारे लिए पूजनीय है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो श्रद्धा किसके ऊपर है, शास्त्र के ऊपर, और श्रद्धा कृष्ण भक्ति के ऊपर है, परंतु शास्त्र को प्रचार के लिए प्रस्तुत करने में इतना निपुण नहीं है, ये मध्यम अधिकारी की परिभाषा है। अब कनिष्ठ अधिकारी तीसरा, इतना ही आज करेंगे, कनिष्ठ अधिकारी, यार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, कमजोर है, क्रमे क्रमे ते हूं भक्त है बे उत्तम, आस्ते आस्ते अगर वो प्रयास करेगा तो उत्तम बन जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगत्यते, जिसकी श्रद्धा कोमल है उसको कनिष्ठ भक्त बोलते हैं। और कनिष्ठ के हमारे पास लक्षण लिखे हैं, एक नंबर, लक्षण नंबर एक कनिष्ठ का, उसको शास्त्र का ज्ञान अति कम है, बहुत अल्प शास्त्र का ज्ञान है, मध्यम अधिकारी से तो बहुत कम है, इसलिए क्योंकि शास्त्र का ज्ञान कम है इसलिए शास्त्र में विश्वास भी थोड़ा कमजोर है, और इसके विश्वास को कोई दूसरा तर्क वितर्क करेगा तो हिला देगा, परंतु फिर भी गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करके वापस भक्ति में लग जाएगा। दूसरा, इसको अभी कृष्ण ही हमारी भक्ति का लक्ष्य है या विषय है, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, परंतु कुछ तो विश्वास है। पूर्ण रूप से अभी तक वो दृढ़ संकल्प नहीं है, परंतु कुछ विश्वास है, इसलिए उसको भक्त कहा जाता है, नहीं तो भक्ति नहीं कहते। तो जीव गोस्वामी कहते हैं उसका जो विश्वास है शास्त्र के अर्थ को जानता है, शास्त्र के अर्थ के ऊपर विश्वास है, परंतु उसको जानता नहीं है। शास्त्र के अर्थ के ऊपर विश्वास है परंतु शास्त्र स्वयं को नहीं जानता है, इसलिए ये इन तीनों में सबसे नीचे दर्जे का, प्रभुपाल लिखते थर्ड क्लास अधिकारी है। यहां हमारा आज का क्लास को पूरा करते हैं। अब हमारे पुस्तक में इसके उपरांत है भगवत गीता के सातवें अध्याय का एक श्लोक है, उसके चार जो सुकृति हैं क्या वो भक्ति में है कि नहीं है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो यहां तक हम आज विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अब आपका कोई प्रश्न है या पुस्तक में ये पढ़ लीजिए, कोई चीज रह गई है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। क्योंकि मेरा एक 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 तो नेट खत्म हुआ कंप्यूटर का, ये फोन में लगा के रखा है तो काम तो चल ही रहा है कृष्ण कृपा से। तो हमने आज क्या पढ़ा, भक्ति के पात्र कौन है, भक्ति का पात्र कौन है पहले पढ़ा, जिसको भक्तों का संग मिला है, और कृष्ण की कथा में थोड़ी रुचि हुई है, वो वैधि साधन भक्ति करने का पात्र है या अधिकारी है। और फिर लिखा था कि वो अति आसक्त होगा तो कर्मी के अधिकारी है, और अति विरक्त होगा तो फिर ज्ञानी का अधिकारी है। अति विरक्त भी नहीं होना चाहिए और अति आसक्त भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि ये जो भक्त है जो वैदिक भक्ति में आया है, तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक कनिष्ठ है, और इनका अधिकार का आधार है शास्त्र के ऊपर विश्वास और उनकी श्रद्धा शास्त्र के ऊपर। इसी के आधार पे ये तीन उत्तम मध्यम और कनिष्ठ हैं, और इसकी और चर्चा अगली बार करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ जी, हाँ जी
प्रभु जी, एक चीज मार्गदर्शन दीजिए, मैं समझने और क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, जो ये भक्ति शास्त्र कोर्स का डिजाइन किए थे ड्यूरेशन का, तो ऐसे हम लोग 120 आवर 60 सेशन रखे थे, तो भक्ति सिंधु को हम कोशिश करके 18 आवर्स मतलब 9 सेशन रखे थे, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बट बहुत जैसे जल्दी आप पढ़ाए एक्चुअली बहुत भक्त बहुत आनंद आएगा, सारा क्लियर होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मतलब कल पहुंच के फोन आ गया, मतलब रुकुण कृष्ण प्रभु का फोन आया कि कृष्णपूर्णेश्वर तो लेना था मैं से, बट हमारे थोड़ा लेट चल रहे दो क्लास, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी, गिव सम आइडिया, ताकि
आपका टाइम बहुत कम है। हम तो एक महीना पूरा रेगुलर क्लासेस भक्ति शास्त्री में, रेगुलर क्लासेस एक महीने से ज्यादा चलती हैं, और प्राय जो है अभी जब रागनों का भक्ति और भाव भक्ति वो अधिक टाइम लेंगे। अब क्या है, इसके बाद ये जो अध्याय है ये तो सामान्य चलेंगे, इसमें एक अध्याय एक दिन में पूरा हो जाएगा, और कुछ तो दो दो अध्याय भी हो जाएंगे, परंतु वो ज्यादा टाइम लेगा। तो अभी कितने आपके कितने क्लास आपके हिसाब से कितने क्लास बचे हैं
प्रभु? मतलब ऐसे तो जो पहले शेड्यूल था तो टोटल 9 सेशन मतलब 18 आवर्स में फिनिश करने का प्लान था।
नहीं कोई भी नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो किसी को कुछ समझ में आएगा, इसका मेरे को विश्वास नहीं आता है।
तो प्रभु ऐसे कर सकते हैं, मतलब आई मीन से जो 17, 18, 19 जो चैप्टर है, 3 चैप्टर, पता नहीं शायद बहुत से बात होगा, अगर तो आपको ये सुंदर उपल को लेने वाले थे, आपको एक से लेके 7, 16 मतलब रागानुभक्ति तक कंप्लीट करने का था, तो पता है कैसे करेंगे, हाउ टू गो, मतलब क्योंकि जिसके फ्लो में हम जाते हैं बहुत अच्छा है, बट ये कि जो रूपकृष्ण प्रभु का